శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదామయ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌర భక్త బృంద. హరి కృష్ణ 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 హరే హరే, హరి రామ 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 హరే హరే. సో దేర్ ఇస్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ కంస. ఇన్ దట్ హిస్టరీ Kamsa goes to perform Digvijay in a place called Prag Jyotishpur. That is the place of Narakasura's kingdom, which is today's Assam. Assam is called as Prag Jyotishpur. So Kamsa goes there. Everywhere he is challenging all the demons, and demons are fighting with him. He is defeating the demons one after another. So he goes to Assam and then he challenges the demons over there. So first one is Pralambasur. Kamsa defeats him. Then comes Arishtasur. Kamsa defeats him. Then comes Shambharasur. Kamsa defeats him. Then Kamsa defeats Agasur and Bakasur. There's a big description about how they fought. Very dangerous description is there, but we are cutting short. And and Narakasur, who was the king of the kingdom of Prag Jyotishpur, was waiting and watching. And finally, when everybody was defeated, they are not killed, they were defeated, subdued, and they became servant of Kamsa. And finally, the pathetic defeat, when everybody saw, Narakasur saw, he sent Putana, the last one. And Putana came to attack Kamsa. So Kamsa said, I cannot fight with you because you are a woman. It is below dignity for me to fight with you. I will make you are my sister, and Bakasur can become my brother, and we can live peacefully. At the end of the story, Narakasur, that is Bhaumasur, came and made friendship with Kamsa. He thought that such a powerful man, and we all have common enemy in the form of demigods. So if you have to fight with demigods, why to fight with each other? Better to make friendship and make allies. Sab saath milke ladenge to devtaon ko parast kar sakte hain. Isliye Narakasur ne aakar friendship ka haath badhaya, and Kamsa became friends with Narakasur. And all these guys, except Narakasur stayed there only, wherever he was. And all these people, Arishtasur, Shambharasur, and Bakasur, Agasur, Pralambasur, everybody came back with Kamsa to Mathura as his servants, to be on call for any service that they have to do. So like that, all these great demons were subdued by Kamsa. And they all were now friends, but actually they were not friends, they were servants of Kamsa. But they were acting as a friend. Now you see that Krishna went to, there's one demon called Agasur, which Kamsa defeated. But that Agha was so powerful that even Brahma had noted his power, because all the demigods were scared of him. Even people in Brahmaloka were scared of him. So Agasur was quite ill famous. Everybody was terrorized by Agasur. His ill fame had reached even Brahmaloka. That is a very powerful demon. And then after few deaths of demons, Kamsa called Agasur and told, please go and kill Kamsa, kill Krishna. So Agasura was informed about how does Krishna look. He wears peacock feather, is blue in color, he plays on flute, he wears yellow garment. So Agasura came in the form of python, Ajgar. And he was so big that he opened his mouth. So his lower part of the mouth was like a highway. And upper part of the mouth was in the sky, in between the clouds. So the mouth ka upper part was looking like a mountain touching the sky. And the lower part with tongue looked like a big highway. So when the coward boys came, his plan was to swallow them. And follow Krishna also and kill them. Finish. So simple it is. No war required. So at that time, all the coward boys came running with their baby cows. And they thought that, wow, wonderful. Wonderful highway. They thought that yesterday. In one day, how new highway came here? Maybe for us to play. The Vidhata has made this highway for us to play. Why not go and play? So everybody was dancing. Somebody said, "Arey, what about if it is a demon? It can be a highway, playground, or it can be a demon." So they were still walking inside, and they were discussing that, oh, if it is like a demon, if it is really a demon, doesn't matter. It can be a demon, no problem. Krishna is there, no, to kill him. So with great faith in Krishna, they all walked in with their cows and cowherd, baby cows, everybody, they walked inside. So Krishna was sitting on a tree and was listening to all their talks. And Krishna was amazed the kind of faith they had. They all were entering the mouth of a demon, which Krishna knew he is a demon. And they were all entering without any fear. So, Guru Maharaj says, Guru Maharaj, Radhana Swami says, that whenever we have any fear in mind, we should read the story of Agasura to get freed from all the fear. So, because the coward boys exhibited fearlessness based on the faith on Krishna, and they entered the mouth of Agasura, dekha jayega, Krishna will look after us. So Krishna thought, ki, are, so much faith they have got, I will take care of him, I will take care of them, so I should do something about it. So Krishna also decided to go inside the mouth of Agasura. And Agasura was waiting with the open mouth, that the real main man has not come inside. So he was still waiting very steadily. You know how snakes are? They are so steady that you don't even feel that they are moving, no moving. You can't understand only. Very steadily was standing there with open mouth. So that time, finally Krishna walked inside. As soon as Krishna walked inside, Ajgar closed his mouth. And all the coward boys died inside. And then Krishna, inside the mouth of Agasura, expanded and became big and big and big and choked up the neck of Ajgar, Agasura. His eyes bulged out and he died because of suffocation. Then Krishna and everybody came out. Krishna glanced over the boys and everybody woke up. At that time the news went to Brahmaloka that a 7-year-old boy has killed the demon called Agasura. So everybody was very surprised, even Brahma was surprised. Brahma could not believe that how can a small boy kill such a big demon? Even the demigods are scared of him. How can a small boy kill him? So Brahma had created some doubt. I don't believe that he is God. Somebody told him also that boy is not God, boy, he is God. He is Krishna himself. So Brahma also did not believe in that. How can this boy be Krishna? He's a coward boy, simple coward boy, herding cows, eating, playing in the dust, stealing butter and all. I don't believe that. So he thought, let me go and check myself. So Brahma came on his swan, huh? Now please listen carefully what happened. Brahma came in Rajahamsa and he parked the vehicle on the sky only. That means stand still. Ek jagah khade ho gaye. And what he is watching? After killing Agasura, Krishna said that, okay, we'll go and take bath in Yamuna. And after taking bath in Yamuna, we will have our lunch. So everyone liked the idea. So all of them took bath in Yamuna. And they came out very fresh, happy. And they sat down in the form of a lotus flower. Kamal ke aakar mein sab log baith gaye. Aur beech mein Krishna baith gaye. Now all these years I had a doubt in my mind that they were sitting goal, na, round agar baithe hain. So somewhere Krishna's back must be seen. Na, and somewhere the face must be seen. It's possible. Na. So I sit in between all of you. Some people will see my back, some people will see my face, somebody will see my sides also. But it is explained by Sukadeva Goswami that he was facing everybody. Everybody was feeling that he is facing them only. And everybody was feeling that he is looking at him only. And like that, in a beautiful divine arrangement, Krishna sat down, they opened their tiffin boxes, and they started eating food. And you know, when children are eating food, they have to have fun. They can't just eat food very quietly or just, तुमने क्या लाया है थोड़ा मुझे दे दो ना, ऐसा बात नहीं करते. वो चिना झपटी शुरू करते हैं तुरंत. दे स्टार्ट स्टीलिंग फ्रॉम वन अनदर्स बॉक्सेस. सो दे स्टार्ट हैविंग ऑल दैट फन, यू नो, दे बिकम वाइल्ड एक्चुअली. सो फर्स्ट दे पिक्ड अप द बॉक्सेस, स्टार्टेड थ्रोइंग इन द स्काई. Somebody is catching, then he is throwing somebody else, then the owner of the box is going to catch that box, and somebody else is catching the box and then throwing away. All that fun was happening, and then they were settled down, and then again they sat down and they were feeding each other. You know, they were feeding. Matlab, look, my mother has given such wonderful thing. Krishna, please taste this. And how they will know the taste? After eating that half, they will know the taste. How wonderful. So मुंह से निकाल के दे विल गिव कृष्णा एंड से टेस्ट दिस, दिस इज वेरी गुड. सो कृष्णा विल ईट दैट ऑल्सो. एंड कृष्णा विल ओपन हिज बॉक्स एंड से माय मम्मी हैज गिवन दिस, इज वेरी नाइस, प्लीज मधुमंगल यू हैव दिस, मधुमंगल यू, सुदामा यू हैव दिस, अर्जुन यू हैव दिस, विशाल यू हैव दिस. एंड लाइक दैट एवरीबडी वॉज ईटिंग फ्रॉम एवरीबडीज टिफिन आफ्टर दे हैड पुट इट इन द माउथ. ही वुड टेक इट आउट ऑफ माउथ एंड गिव इट टू कृष्णा एंड कृष्णा वुड ईट इट. And then I made a mistake. Madhumangal was not there. Madhumangal joined little later. And he had got big lassika pot. And he was thinking that everybody is stealing everybody's food. Everybody is giving half the food to Krishna. Krishna is giving the half the food to him. No, but I don't want to give. I want to drink my lassi on my own. So for far distance he was standing and he is drinking his lassi. And then somebody told Krishna that, Krishna, did you see? There is Madhumangal eating, drinking the lassi alone. So Krishna said, okay, let's go and attack him. He can't do this. He has to share with us. So Madhumangal saw that everybody is running towards him. So he thought, I might as well drink everything fast. So he started drinking everything fast. By the time they reached there, and they saw that Madhumangal has gulped everything and collected in the cheeks. The cheeks have bulged because he could not drink so fast. And he was about to drink that. So Krishna went and gave two gulchas on his cheeks. Do box de diya, I say. And the lassi came out of the mouth in the form of pichkari. And Krishna immediately cupped his hands and drank that lassi coming out of the mouth of Madhumangal. And you may say, मुंह का निकाला हुआ जूठा लस्सी पी रहा है. बट कृष्णा हैड ग्रेट ग्रेट फन टू ड्रिंक दैट लस्सी कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ मधुमंगल. एंड हु इज वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स? ब्रह्मा जी इज स्टैंडिंग इन द स्काई सिटिंग ऑन द राजहंस वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स. एंड ही कन्विंस हिमसेल्फ कि दिस बॉय कैनॉट बी गॉड बिकॉज इन आवर डेमीगॉड लोका Devaloka, everybody is having mantras and chappan bhogas and chanting and ghanti, and so much procedure is there. And after that, again ghanti is there. Again, after that, we remove the prasadam and we honor the prasadam. We don't steal from God's plates. And God doesn't eat food eaten by others. This is impossible. How can he be God? I am convinced he is not God. So further, let me see, if this boy has killed Agasur, let me test him to find out whether he is really God or not. So while they were busy eating, really they were enjoying, really they were engrossed in eating and really having fun. At that time, the calf, the baby calf, you know, there were baby, many baby calves were there. They were all searching for fresh green grass. So they were crawling ahead and eating the fresh grass. They got little separated from the boys, you know. They were in large number. But they went little away because the boys were busy eating, so they also wanted to eat. So they also started eating the grass. And Brahmaji, by his mystic power, stole all those calves. Went to Brahmaloka and hid them in a cave. And he hypnotized them completely. And he put them in the cave. And he came back. At that time, Krishna suddenly came to know. Boys said, "Are, where are our cows have gone?" So they all got up to search the cows. So Krishna said, no, don't worry. Please sit down here, enjoy. Don't disturb your enjoyment. I don't want you to disturb your enjoyment. You keep enjoying the food. I will go and search for the baby cows." And he got up and he went out of the circle and he saw the footprints of the cows. They are grazing. So to a certain distance, the footprints were there. After that, the footprints were not there. Not a single footprint was there. So he understood that Brahma has stolen all my baby cows. And taking a chance, when Krishna had left the circle,
Hindi
bolna hai.
You can use Hindi.
So jab hi unhone samjha, unko Bhagwan ko samajh mein aaya ki Brahma ji ne inko churaya hai. So jab Krishna Bhagwan laut ke aaye, तो उस बीच में जब कृष्ण भगवान उस सर्कल को छोड़कर बाहर गए थे बछड़ों को देखने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने बच्चों को भी चुरा लिया, सभी बच्चों को उठा लिया और हिप्नोटाइज करके वापस उनको गुफा में बंद कर दिया. अभी कृष्णा अकेले हाथ में थोड़ा दही, थोड़ा केला, थोड़ा सा राइस पकड़ के ऐसा घूम रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स किधर गए, मेरे बेबी काउस किधर गए, ढूंढ रहे हैं इसे, एकदम अनजान बनकर ऐसे ढूंढ रहे हैं. और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखता हूँ क्या कर रहा है अभी ये. जब ये बालकों को छोड़कर वापस आए ब्रह्मा जी, तो क्या देखा, सारे बालक वहीं पर हैं, बैठकर खाना खा रहे हैं, सारे बछड़े भी वहीं पर हैं, घास खा रहे हैं आराम से. तो बड़ा आश्चर्य हो गया उनको. वापस जाके देखा तो गुफा में थे सब लोग सोए हुए ब्रह्मा लोक में. वापस नीचे देखा तो उधर भी खेल रहे हैं, तो क्या चमत्कार है. तो ब्रह्मा जी को बहुत क्या होते हैं, भ्रम हो गया. भ्रम मतलब ही गॉट कंफ्यूज, ही गॉट बेविल्डर्ड. तो ब्रह्मा जी को और बेविल्डर करने के लिए और उनको भ्रमित करने के लिए भगवान ने क्या किया, जितने भी ग्वाल वाल थे वो सबको उन्होंने कृष्ण का रूप मतलब विष्णु का रूप दे दिया. सारे ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जितने बच्चिया मतलब बेबी फीमेल काउज, बेबी मेल काउज, जितने भी थे वो सारे विष्णु बन गए एक साथ. एक क्षण में सबके आंखों के सामने वो सब लोग विष्णु बन गए और उसके बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं और वो भी आनंद ले रहे हैं. और उनके क्या कहते हैं उसको, बिविल्डरमेंट को, आश्चर्य को भर डालने के लिए क्या किया, हर एक विष्णु के सामने एक 33 करोड़ देवता का सेट जो है वो उस विष्णु की पूजा कर रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है, उनकी आरती कर रहा है, उनको गिफ्ट दे रहा है. हर एक सेट में ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग हैं. तो ब्रह्मा जी देखकर पागल हो गए, अपने को भी देखा उसके अंदर कि वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं. तो ये देखकर ब्रह्मा जी पूरे भ्रमित हो गए. वो कैसा है ना, उनका दिमाग जो है ना वो सबसे बड़ा दिमाग है इस दुनिया का, सबसे बड़ा दिमाग ब्रह्मा का है. और एक नहीं चार दिमाग है उनको, चार सर है उनके और चार दिमाग में, चार सर में चार मेंदू है उनका. और वो मेंदू इतना इतना पावरफुल है कि पूरा वर्ल्ड का निर्माण करते हैं वो. उस मेंदू के माध्यम से, कितना ब्रेन होगा उसके अंदर, कैसा हाईटेक सॉफ्टवेयर होगा, हर एक आदमी का बॉडी कैसा होना चाहिए, चेहरा कैसा होना चाहिए, कौन साउथ इंडियन होना चाहिए, कौन नॉर्थ इंडियन होना चाहिए, कौन महाराष्ट्र होना चाहिए, कौन काला होना चाहिए, कौन गोरा होना चाहिए, कौन विदेशी होना चाहिए, कौन देशी होना चाहिए, सब कुछ उनके अंदर अगर सॉफ्टवेयर फिट है, हर एक के कर्म के अनुसार कैसा कैसा शरीर होना चाहिए, वो पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास में है, उनका चार दिमाग के अंदर इतना इंफॉर्मेशन है, इतना सॉफ्टवेयर है कि वो पूरे 14 भुवन के अंदर जितने जीव हैं, देवता है, मनुष्य है, जानवर है, राक्षस है, दानव है, सबका शरीर डिजाइन करते हैं, और बाकी सारे देवताओं को काम देकर पूरा 14 वर्ल्ड का काम संभालते हैं। टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, प्रथम नागरिक है वो यूनिवर्स का, जैसे मीरा भाईंदर का प्रथम नागरिक कौन है, महापौर, मुंबई का प्रथम नागरिक कौन है, मुंबई का महापौर, वैसे पूरे ब्रह्मांड का प्रथम नागरिक कौन है, ब्रह्मा जी, और नेचुरली सबसे बड़ा ब्रेन उनके पास था, लेकिन वो इतना बड़ा ब्रेन भी पूर्णता से भ्रमित हो गया, ये चमत्कार देखकर समझ में नहीं आया क्या चल क्या रहा है, वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, और सब जगह विष्णु ही विष्णु है, सब जगह उनकी आरती हो रही है, सब जगह शिव जी है, सब जगह ब्रह्मा ब्रह्मा है, सब जगह पर देवी है, सब जगह देख रहा है, और अचानक उनके आंखों के सामने सब कुछ सीन गायब हो जाता है, और वापस वही कृष्ण जो है वो हाथ में दही चावल और केला लेकर ढूंढ रहा है कि मेरे बच्चे फ्रेंड किधर गए सब, वो खुद कंफ्यूज दिख रहा है, ढूंढ रहा है वो, तो उस समय ब्रह्मा जी को ये पता चला कि जिसका टेस्ट करने के लिए मैं आया था वो साक्षात मेरे भगवान है, मैं कैसे भूल गया इस बात को, मैं उनकी परीक्षा करने आया, जो मेरे भगवान है, जो मेरे आराध्य है, मेरे वर्शिपेबल गॉड है, वो मैं उनको ही टेस्ट करने को आया, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्दैवी घटना है ये, तो जैसे ही पता चला कि गलती हो गया तो पश्चाताप हो गया उनको, तो वो भगवान के चरणों में गिर गए और स्तुति करने लगे, बहुत सारा स्तुति किया उन्होंने, और ब्रज में कहते हैं कि भगवान ने उनको माफ नहीं किया क्योंकि भगवान नाराज थे बहुत, उनको अपने भक्तों पर बड़ा प्रेम है और उनके भक्तों के साथ खेलने के लिए वो वृंदावन में अवतार लेकर आते हैं, और वो खेल में डिस्टर्ब करना मतलब बालकों को ही छीन लेके जाना, जिसके साथ में खेलना है उनके ही साथ में उनको लेके जाना मतलब क्या, टू डिस्टर्ब माई गेम माई प्ले विद माई फ्रेंड्स माई डिवोटीज, ब्रह्मा जी नाराज थे, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने फिर ब्रज रज का आश्रय लिया और पूरे 84 कोस ब्रज मंडल का दंडौती परिक्रमा किया, कहते जब भगवान के ब्रज भूमि के रज का आश्रय ब्रह्मा ने लिया तभी जाकर ब्रह्मा जी को माफी मिली, और इसे और भी सुना है मैंने कि ब्रह्मा जी का शरीर जो गोरा गोरा शरीर था तेजस्वी एफलजेंट बॉडी ऑफ ब्रह्मा इट बिकेम टोटली ब्लैक बिकॉज ऑफ द ऑफेंस, ये अपराध के वजह से ब्रह्मा जी का तेज नष्ट हो गया, तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही परिक्रमा आरंभ किया और धीरे धीरे तेज वापस आने लगा, वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो वो हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट थे, तो कुछ विद्वान ने पूछा ब्रह्मा जी महाराज क्या हो रहा है, तो ब्रह्मा जी कह रहे दंडवती परिक्रमा कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने ब्रजवासी के साथ दंडवती परिक्रमा किया और जब पूरा किया तो पूरा तेज वापस आया उनका, और दंडवती परिक्रमा करने के बाद में फिर भगवान ने उनको माफ कर दिया है, उसके बाद ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की है, बहुत बहुत सारा गीत गाया है, बहुत रोए हैं ब्रह्मा जी पश्चाताप करते हुए, और भगवान क्या सोच रहे हैं, ये भगवान ने ऐसा वर्णन भागवत में दिया है कि ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे तब भगवान शांत खड़े थे, ऐसे हाथ शांत खड़े थे एकदम निर्विकार, उनके मन में क्या है समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सोच रहे हैं वो, ब्रह्मा जी बोलते जा रहे हैं भगवान खड़े हैं सुन रहे हैं, लेकिन एक शास्त्र है जिसका नाम है बृहद भागवतामृता, जिसको सनातन गोस्वामी ने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कृष्ण भगवान के मन में क्या चल रहा था, तो कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं व्हाट ही वाज थिंकिंग दैट दीज ग्रेट डेमिगॉड्स आई गेव देम सो मच पावर, मैंने इनको इतना पावर दे दिया है, और इतना बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया है, इतना बड़ा अधिकार दिया है, और यही लोग आकर मेरे लीला में डिस्टर्ब करते हैं, मिस्टेक करते हैं, गड़बड़ करते हैं, अपराध करते हैं, फिर कुछ समय बाद में उनको पता चलता है कि हमने अपराध किया है, फिर वो पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मेरा टाइम कितना बर्बाद करते हैं। एक तो लड़कों को लेकर गया, ऊपर से डिस्टर्ब हो गया ना मेरा लीला, लीला बंद हो गया मेरा। उसके बाद मालूम पड़ा कि गलती किया, फिर लड़कों को लेकर आया, फिर उसके बाद गीत गा रहा है, उसके बाद प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद रो रहा है, कितना समय मेरा वेस्ट हो रहा है इसके अंदर। हाँ, मेरा लीला में कितना खंड हो गया इसके अंदर। अरे कभी तुम प्रार्थना समाप्त करेगा और कब मैं खेलने को जाऊंगा वापस, ये भगवान के मन में विचार चल रहा था। लेकिन भगवान बड़े क्या कहते हैं ना, वो सेंसिटिव है, बोल रहे बेचारा रो रहा है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो भाई बोल अभी क्या बोलना है, बोल दे, तेरे मन में क्या है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, कर ले, मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। और भगवान को लेकिन मन में उत्सुकता थी, he was very eager to go back and play with his boys, but he was waiting very patiently to finish the prayers of Balram, of Brahma ji. आखिर ब्रह्मा जी का प्रेयर समाप्त हो गया, भगवान ने कहा दोबारा मत करना गलती ऐसा, सोच समझ के काम करना, अभी जाओ। फिर ब्रह्मा जी गए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मन में ना दुख कम नहीं हुआ, उनको लगा मैं ब्रह्मा बन के क्या फायदा है, कितना बड़ा ब्रेन दिया है मुझे, चार चार दिमाग दिया है, किसी को दिया है क्या, एक ही को दिया है, मेरे को दिया है, और वो चार दिमाग में ऐसा शक्ति डाल के रखा है कि दुनिया में किसी भी ब्रेन में इतना शक्ति नहीं, उतना शक्ति मेरे को दिया भगवान ने, ऊपर से हृदय में नॉलेज भी दिया, पूरा पूरा नॉलेज हृदय में प्रकट कर दिया मेरे। कितना कृपा करने के बाद भी मैंने ऐसा गलती किया, कितना दुर्भाग्य हूं मैं, बहुत दुख हुआ उसको। भगवान के पास से चले जाने के बाद भी वो ज्यादा उड़ नहीं पाए आगे, तुरंत वृंदावन में उतर गए और एक जगह बैठ के इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि एक बड़ा अश्रुओं का हौद तैयार हो गया, अ बिग पॉन्ड वाज क्रिएटेड। मैं हमेशा सोचता हूं कि वो आज भी वो इतना बड़ा पॉन्ड है कि हमारा 6 माले का 8 माले का पूरा भक्ति वेदांत अस्पताल नए बिल्डिंग के साथ में उसके अंदर बैठ सकता है, इतना बड़ा हौद है वो। और वो सारा जितना बड़ा हौद था ना, वो सारा ब्रह्मा जी के अश्रु थे। सो इतना बड़ा हौद था वो, जिस हौद में ब्रह्मा जी ने आंसू बहाए, फिर शांत हो गए, फिर वहां से उड़े, और वहां से उड़ने के बाद में वापस नवद्वीप में उतरे, ऊपर नहीं जा पाए, पृथ्वी पर वापस उतरे, और बोला अभी मेरे को ना इस समस्या का समाधान एक ही बार करना है, बार बार मैं मिस्टेक करेगा तो अच्छा नहीं है। और सारा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मैं ब्रह्मा के पद पर था, ब्रह्मा के पोस्ट पर बैठा हूं, इसलिए इतना घमंड हो गया मुझे, इतना अहंकार हो गया मेरे पावर का, कि मैं मेरे भगवान को भी पहचान नहीं पाया। इसलिए वो तपस्या किया तो नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया, तो भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और वरदान मांगा कि मुझे इतना गारंटी दो कि नेक्स्ट लाइफ में मैं ब्रह्मा न बनूं, मुझे ऐसा लाइफ दो कि कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, मुझे कोई सम्मान नहीं रहेगा, कोई पोजीशन नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो भगवान ने उनको वादा किया, आई अप्रिशिएट योर मूड, तो आपको हरिदास ठाकुर का जन्म लूंगा, आपको कोई सम्मान नहीं होगा, आप यवन काल यवन कुल में जन्म लोगे और भगवान के नाम के आचार्य बनोगे। तब ब्रह्मा का समाधान हुआ और ब्रह्मा फिर चले गए अपने धाम में, ब्रह्मा लोक में, और नेक्स्ट लाइफ में फिर कलयुग में वो हरिदास ठाकुर बनकर आए। यहाँ पर क्या हुआ, एक साल बीता था जब ब्रह्मा जी लौट कर आए थे ना, तो पृथ्वी का एक साल बीता, तो एक साल में कृष्ण भगवान सारे बछड़े बने हुए थे और सारे ग्वाल बाल बने हुए थे। ब्रह्मा जी का जाने में और आने में एक साल व्यतीत हो गया और सारे बछड़ों का और ग्वाल बालों का भगवान ने रूप लिया था। तो उस बीच में एक दिन सारे बछड़ों ने कृष्ण बनकर, कृष्ण ने सारे बछड़े बनकर सभी गायों का दूध पिया, सभी गायों को कृष्ण अपना दूध पीने की इच्छा थी तो भगवान ने पूरा किया। बछड़े के रूप में कृष्ण भगवान ने सब जगह की घास खाया, सब जगह की मट्टी खाई। फिर बड़ी गाय भी बहुत आनंद का अनुभव करती थी उस समय कि अपने बालकों को मिलकर बहुत खुशी होती थी। और सभी बालकों के रूप में कृष्ण भगवान ने सभी गोपियों का स्तन पिया, क्योंकि सभी गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा बालक बने। तो कृष्ण ने सभी गोपियों की इच्छा पूर्ण की और उनका बालक बनके उनका स्तनपान किया, उनके घर में निवास किया, उनको बहुत आनंद दिया, एक साल तक आनंद दिया। उसी साल में कृष्ण भगवान ने कहा कि सभी गोपियों की शादी सभी गोपियों से होनी चाहिए। तो उस साल में सबकी शादी भी हो गई, यानी सभी गोपियों की इच्छा थी कृष्ण हमारे पति बने। तो सभी गोपियों की इच्छा भी कृष्ण ने पूरी की, वो गाल बाल के रूप में कृष्ण भगवान ने उनसे शादी भी किया। ऐसे बहुत चमत्कार हो गए उस साल में, बहुत चमत्कार हो गए। और एक साल के बाद में जब लौट के आए थे तब ब्रह्मा जी ने अपने बछड़े लौटा दिए, तो कृष्ण ने जो रूप धारण किया था वो सब गायब हो गए और ओरिजिनल जो ग्वाल बाल हैं वो सब लौट के आए, ओरिजिनल जो बछड़े थे वो लौट के आए। और वो एक साल के बाद जब घर गए तो उन्होंने एक साल के बाद पहली बार घर जाकर कहानी बताई कि कृष्ण ने अगासुर को मारा। तो सुखदेव जी को महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि अगासुर को मारने के बाद में एक साल के बाद में क्यों डिस्क्राइब किया उसको। तो कहते हैं कि सुखदेव जी को उस समय मूर्छा आ गई, सुखदेव जी फेल अनकॉन्शियस इन एक्सटेसी, क्योंकि वो उसके उत्तर में उन्होंने फिर ब्रह्म सम्मोहन लीला बताई है, उसके उत्तर में ब्रह्मा ने क्या क्या किया वो सब समझाया है। लेकिन वो सोचकर सुखदेव जी जो बता रहे थे भागवत, उनको मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गए। उस समय परीक्षित महाराज को पता था कि ये जो बड़े बोलने वाले सुखदेव जी हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, वो कभी भी कृष्ण की कथा बोलते बोलते बेहोश हो सकते हैं। तो उन्होंने वाद्य बजाने वाले तैयार रखे थे कि जैसे ही ये कभी बेहोश हो जाएंगे तो धार 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 बजाना है ताकि ये जग जाएंगे। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि अगासुर को मारने के बाद में एक साल तक ये चर्चा क्यों नहीं हुई, तो वैसे ही बोलते समय प्रश्न सुनते समय ही सुखदेव जी बेहोश हो गए। तो राजा परीक्षित ने इशारा किया, सिग्नल दिया कि बजाओ अभी आप। तो सब लोगों ने तुरंत बजाया तो वो ऊपर होश में आ गए। और होश में आने के बाद में जो मैंने आपको भी कहानी सुनाई ब्रह्मा जी ने क्या क्या किया, वो पूरी कहानी सुनाई है और समझाया है कि एक साल के बाद में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक साल में कृष्ण भगवान स्वयं वाल बाल बनकर और बछड़े बनकर ब्रज में विहार कर रहे थे, इसलिए वो बताया नहीं उन्होंने। जब ओरिजिनल ग्वाल बाल लौट के आए तो उन्होंने जब उस दिन घर पहुंचे पहली बार एक साल के बाद, तो जैसे कि आज ही हुआ है ऐसे उन्होंने उनका वर्णन सुनाया। तो ये ब्रह्म सम्मोहन लीला बहुत अद्भुत लीला है, बहुत ही अद्भुत लीला है। हमको ये बताती है कि जब हमको पैसे का, अधिकार का, पोजीशन का, पावर का जब घमंड होता है तो हमारे हाथ से बहुत मिस्टेक होती है। इसलिए कभी भी किसी भी पावर का, किसी भी पोजीशन का, अधिकार पर गर्व नहीं करना चाहिए। हम सब लोग भगवान के सर्वेंट हैं और जितना भी हमको पोजीशन दिया है, पावर दिया है, अधिकार दिया है, वो सेवा में लगाने के लिए दिया है। द अथॉरिटी इज गिवन टू सर्व, नॉट टू मास्टर, नॉट टू कंट्रोल, not to become the boss, not to become the king, not to become god. तो ब्रह्मा जी ने क्या अपने उदाहरण से बताया कि ब्रह्मा जी भी आप बनेंगे और ब्रह्मा जी बनने के बाद में अपने पावर पर गर्व करेंगे तो आपका भी दिमाग भ्रष्ट हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बताया कि मेरा भी दिमाग भ्रष्ट हो सकता है अगर मैं अपने पावर पर घमंड करूं। तो जड़ क्या है उन्होंने बताया, रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि मैं ब्रह्मा था इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया। इसलिए ब्रह्मा ने पश्चाताप किया। तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने सारे पावर, सारे अधिकार, सारे अथॉरिटी जितने आपको मिलती है वो केवल सेवा में उपयोग करने के लिए है, ये हमको समझना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।